विष्णु पाद परमहंस स्वजिकाचार्य स्रोत सताय डिवाइन ग्रेसेस से भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की इस फाउंड फाउंडर आचार्य बेबूटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेसेस से भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हम विष्णु पाद परमहंस स्वजिकाचार्य स्रोत सताय डिवाइन ग्रेसेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवृंद की नामचार्य शिवदास ठाकुर की प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद की राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम को राधा कुंड गिरी गोवर्धन की शिवृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की वृंदेवी तुलसी मरान की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की इस्कॉन 50th ईयर गोल्डन जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की निधाय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू समली गोटीज ऑल ग्लोरी टू समली गोटीज ऑल ग्लोरी टू समली ऑल ऑल ग्लोरी टू शिष्य गुरु ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु युतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्त नमस्कुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्द माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरे कृष्ण। मैं भजन का अनुवाद पढ़ देता हूँ। अहो जो आप अकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए। मेरे शिला स्वरूप दामोदर शिला रूप सनातन तथा पतितों का पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु ये सब एक साथ कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग में कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर पर पटक दूँ या आग में प्रवेश कर जाऊँ। गुणों के भंडार श्री गौरंग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। इन सब संगियों के साथ गौरंग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर श्री नरोत्तम दास ठाकुर केवल विलाप कर रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की तो और भी इंटरेस्टिंग यह है कि ये जो जे नीलो प्रेमा धन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं सबसे पहले श्रीनिवास आचार्य के अप्राकट्य को विलाप करते हुए लिखते हैं। तो आज वो दिन है जिसमें जब श्रीनिवास आचार्य का अप्राकट्य हुआ तिरुभा दिवस है और साथ साथ में आज गोपाष्टमी भी है और दोन महान वैष्णव आचार्य का तिरुभाव है धनंजय पंडित जी का और गदाधर दास गोस्वामी का। ये गदाधर दास गोस्वामी गदाधर पंडित से अलग है और उनका भी आज तिरुभाव दिवस है। तो आज चार प्रमुख उत्सव हैं। तो आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ये सेवा प्राप्त हुई कि मैं इन उत्सवों के ऊपर कुछ कीर्तन कर सकता हूँ कुछ बोल सकता हूँ। तो मैं सभी से आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं अच्छी तरीके से सेवा को निभा पाऊं। तो आज पहले मैं सोच रहा था कि किसके ऊपर चर्चा करूं, तो गोपाष्टमी भी है, उसमें भी बहुत कुछ बोला जा सकता था, और वैष्णव आचार्य थे, इनके भी काफी कुछ बोला जा सकता था। तो मैंने सोचा कि शायद अगर जो है वो श्रीनिवास आचार्य जो भगवान के नित्य परिकर हैं, इनके ऊपर गुणगान किया जाए तो शायद भगवान जो है शायद ज्यादा प्रसन्न हो। तो फिर सबका आशीर्वाद प्राप्त करके जो है आज बाकी 3 उत्सवों के ऊपर छोटा सा वर्णन करके फिर आज श्रीनिवास आचार्य के जीवनी के ऊपर हम कुछ श्रवण करेंगे। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि 9 बजे तक तो बता नहीं कितना कर पाऊंगा, बट कोशिश करता हूँ। तो आज गोपाष्टमी है, तो गोपाष्टमी वो दिन है जैसे आप सुबह सुन रहे थे कि आज भगवान वत्सपाल से गोपाल बने। जब भगवान 4 अवस्था यौवन तक होती है, पहले 5 साल कुमार अवस्था, फिर 5 से 10 साल पौगंड अवस्था, फिर 10 से 15 किशोर, और उसके बाद यौवन अवस्था, उसके बाद फिर आगे वृद्ध अवस्था। तो जब भगवान 5 साल के हो जाते हैं, कुमार अवस्था से पूरी कर लेते हैं, तो कुमार अवस्था तक जब छोटे थे तो भगवान को जो सेवा मिली थी कि बछड़ों को चराने की, फिर जब भगवान बड़े हो जाते हैं और बाकी ग्वाले भी बड़े हो जाते हैं, तो उनको फिर नंद महाराज और सब ये निर्णय लेते हैं कि उनको जो है अब ये सेवा प्राप्त होगी, गाय को वो चराने के लिए ले जाए। तो आज के दिन जो है उनको ये जो है गाय को चराने की सेवा प्राप्त हुई थी, तो इसको गोपाष्टमी कहते हैं। तो भगवान को सिर्फ सेवा मिली थी, 9 लाख गाय थी नंद महाराज, तो 9 लाख गायों को चराना था। तो अब उनको चराना था तो निश्चित रूप से गाय को पूरे गाय को चराने के लिए काफी बड़ी जगह चाहिए होती है, तो वृंदावन के अंदर जाकर उनको चराना पड़ता। तो यशोदा माँ को चिंता हुई कि अगर कृष्ण छोटे से कृष्ण अगर इतने लंबे रास्ते के लिए जाएंगे और वहां पर तो बहुत सारे कंकर है, पत्थर है, और वो नंगे पांव जाएंगे तो उनको जो है वो चुभ सकता है, तो उनके लिए जो है वो जूते बनाने के लिए सोचती है, और कृष्ण को बोलती है कान्हा मैं तुम्हारे लिए जूते बना रही हूँ, तो जूते पहन के जाना। तो कान्हा बोलता है मैं गोपाल हूँ, गाय का सेवक, अगर हम मेले जूते बनाएंगे तो जो 9 लाख गाय हैं उनके भी जूते बनाने पड़ेंगे। तो मेले 2 जूते हुए, 9 लाख गाय, कितने जूते हो गए? सिर्फ 36 लाख, 9 गुना 4, उनके 2 पैर नहीं है, 4 पैर। तो इसलिए फिर भगवान को नंगे पांव जाना पड़ा, लेकिन पृथ्वी माता के लिए आशीर्वाद था क्योंकि भगवान के चरण कमल उनके पृथ्वी पर पड़ते। तो पूरे वृंदावन में भगवान ने अपने चरण कमलों को रखा ब्रज में, इसलिए जितने भी भक्त हैं अधिकांशतः कोशिश करते हैं जितना संभव हो सके कि ब्रज में नंगे पांव चले। तो आज वो दिन था गोपाष्टमी का। उसके अलावा आज गदाधर दास गोस्वामी जी का 13वां दिवस है। गदाधर दास जो है वो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद अधिकांशतः या तो गोपाल हैं कृष्ण लीला में या गोपी हैं। तो गदाधर दास जो मतलब कुछ शाख्य रस में कुछ माधुर्य रस में, तो जो गदाधर दास गोस्वामी माधुर्य रस में, और ऐसा बताया जाता है कि गदाधर दास गोस्वामी चंद्रकांति गोपी हैं कृष्ण लीला में, और जो कि भगवान की गोपी हैं, और उनके अंदर बलराम जी की गोपी हैं पूर्ण आनंद, उनका भी दोनों इकट्ठे जो 2 गोपी हैं कृष्ण की गोपी और बलराम की गोपी इकट्ठे जो है वो गदाधर दास गोस्वामी के रूप में आते हैं। तो इसलिए गदाधर दास जो है वो महाप्रभु के भी सेवक रहते हैं और नित्यानंद प्रभु के भी। तो गदाधर दास गोस्वामी का ये छोटा सा वर्णन है। और उसके बाद आया एक और 13वां दिवस है धनंजय पंडित का। धनंजय पंडित भगवान की सखा, भगवान श्री कृष्ण की सखा है वसुदाम कृष्ण लीला में, तो वो जो है धनंजय पंडित बन के आते हैं और महाप्रभु के वो नित्य सेवक के रूप में आते हैं, और कृष्ण प्रेम और मैं बिल्कुल डूबे रहते थे। तो और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से वो है श्रीनिवास आचार्य के ऊपर। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सब गुरुवर्ग से, वैष्णव से, कि मैं कितना कर पाऊंगा पता नहीं। तो श्रीनिवास आचार्य जो है हम जानते हैं जैसे कलयुग जब शुरू होता है तो कलयुग के शुरू होने के बाद जो है वो हम देखते हैं जो ब्राह्मण वर्ग है उनका पतन होना शुरू हो जाता है। हम वो जानते हैं परीक्षित महाराज का कैसे उनको श्राप मिलता है और ब्राह्मण कुल का पतन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म उसका प्रचार होना शुरू हो जाता था पूरे भारत में, और साथ साथ मायावाद का प्रचार होता है पूरे भारतवर्ष में। तो वैष्णव धर्म कहीं ना कहीं जो है वो आच्छादित हो जाता है, बौद्ध धर्म का प्रचार हो जाता है मायावाद धर्म का, और जो ब्राह्मण जो तथाकथित सनातन धर्म के प्रचारक हैं वो उनका पतन होना शुरू हो जाता था, और साथ में फिर मुसलमान का राज्य फैलना शुरू हो जाता है, और वो भी जो है वो कई लोगों को जो है मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे बीच में एक रेनेसांस आता है और वो लाते हैं जो चार हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं और खासकर महाप्रभु अबाउट 15-16 सेंचुरी में, और दोबारा से वो वैष्णव धर्म को पूरे भारत में स्थापित करते हैं। लेकिन ये तो, और इसको तो कई लोगों ने डॉक्यूमेंट भी किया है, कई बायोग्राफीज हैं महाप्रभु के ऊपर और हमारे पूर्व के आचार्यों के ऊपर, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महाप्रभु के जाने के बाद एक दोबारा रेनेसांस लेके आए थे, और वो ये लेके आए थे तीन वैष्णव आचार्य, उसमें से एक है श्रीनिवास आचार्य, एक है नरोत्तम दास ठाकुर और एक है श्यामानंद पंडित। तो दोबारा से वैष्णव धर्म को पूरे भारत में प्रचार करते हैं, सेकेंड टाइम रेनेसांस लेके आते हैं भारत। और ऐसा बताया जाता है कि महाप्रभु जो है वो जो कृष्ण प्रेम की तिजोरी थी उसका ताला तोड़कर कृष्ण प्रेम को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे, तो उन्होंने उस तिजोरी का ताला तोड़ दिया, तो तिजोरी तो खुल गई, लेकिन उसमें जो कृष्ण प्रेम निकाला पतीलों में, ऐसा बताया जाता है वो थे छह गोस्वामी। कैसे? अपने शास्त्र लिखकर, जो महाप्रभु ने साक्षात वैसे शिक्षा से मुख्य रूप से लिखित रूप से नहीं दी, इन छह गोस्वामियों के माध्यम से लिखी, और इन छह गोस्वामी ने जो है ये ग्रंथ लिखे, और इसके माध्यम से ऐसा बताया जाता है, ऐसा एक उपमा दी जाती है कि उन्होंने कृष्ण प्रेम पतीलों में डाल दिया जो कि तिजोरी से निकला था। लेकिन ये पतीले जो है वो लोग तब तक नहीं पी पाते तब तक उनको ये पतीले मिलते नहीं, तो जो पतीले कृष्ण प्रेम से भरे हुए जो पहुंचाने का काम था वो तीन वैष्णव आचार्यों ने किया, किताबों का वितरण करके। और इन तीन वैष्णव आचार्यों ने पहले ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी बनाई और इन शास्त्रों को पूरे भारत भर में उनका प्रचार किया, इनका प्रसार किया। और हम इन तीनों की जीवनी में देखेंगे कि इनके आने से पहले ही महाप्रभु इनके आने के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के आने के पहले भी प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी थी कि वो पूरे पाश्चात्य जगत में फैलाएंगे, तो भारत में ये ग्रंथों का जो प्रचार होगा इसकी भविष्यवाणी महाप्रभु पहले करते हैं तीन चारों के बारे में, और इसके बारे में हम श्रवण करें। तो सबसे पहले जो आज चर्चा कर रहे हैं श्रीनिवास आचार्य के ऊपर। तो श्रीनिवास आचार्य के जो पिता थे उनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, और बंगाल में आपने नाम सुना होगा वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, हम जाते भी हैं वहां पर जब हम लोग मायापुर जाते हैं, तो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक जगह थी चाखंडी, तो वहां पर ये रहते थे गंगाधर भट्टाचार्य, और उनकी पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया, ये भी महाप्रभु के अनन्य भक्त थे, महाप्रभु का स्मरण कीर्तन श्रवण करते रहते थे। तो एक दिन गंगाधर भट्टाचार्य की इच्छा हुई कि मैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जाऊं, तो वो चाखंडी को छोड़कर कहां गए होंगे, नहीं नवद्वीप पर। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में जगह पड़ती है कटवा, कटवा में क्या हुआ था, तो उनको जब कटवा से गुजर रहे थे तभी किसी ने उनको बोला कि महाप्रभु नवद्वीप से यहां आ गए और संन्यास ले रहे। जब उन्होंने ये सुना तो उनको दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। दुख इस बात का हुआ कि उनके जो ईश थे वह विरक्त आश्रम में जा रहे थे, तो वो सोचने लगे कि भगवान को ये संन्यास आश्रम देने की क्या आवश्यकता है, संन्यास आश्रम तो एक बद जीव के लिए है, बद जीव इस भौतिक जीवन से आसक्त होता है तो उसके लिए विरक्त होने के लिए संन्यास आश्रम, लेकिन भगवान तो किसी से आसक्त नहीं है तो भगवान को संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है, और अगर संन्यास आश्रम में लेंगे तो बहुत ही विरागी जीवन जिएंगे, बहुत तपस्या करेंगे, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो दुख हो रहा था, क्योंकि खुशी की हो रही होगी क्योंकि उनको महाप्रभु के दर्शन भी हो रहे। तो फिर वो आगे नदी में जाकर उस स्थान पर गए जहां महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे, और उन्होंने देखा कि महाप्रभु जो है महाप्रभु अपना सर मुंडवा रहे थे, और जो नई महाप्रभु का सर मुंडवा रहा था उनका नाम था मधु, तो वो भी रोते हुए महाप्रभु का सर मुंडवा रहा था कि महाप्रभु इतने सुंदर केश थे, तो उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन उसको लग रहा था महाप्रभु ही मेरे हाथों से अपना सर मुंडवा रहे, और जैसे ही उसने सर मुंडवाया तो बेहोश हो गए। और फिर गदाधर पंडित ने देखा कि महाप्रभु ने भी संन्यास वेश धारण किया है, भैरव वेश धारण किए, और फिर उनके जो संन्यास गुरु थे उनका नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये नाम जो है वो गंगाधर भट्टाचार्य के हृदय में छप सा गया, श्री कृष्ण चैतन्य। अब तक तो सिर्फ गौरंग महाप्रभु बोलते थे, चैतन्य उनको नाम मिला था। तो ऐसा छपा कि निरंतर चैतन्य चैतन्य बोलने लगे, क्योंकि उनको विलाप भी हो रहा था, वियोग भी हो रहा था, तो चैतन्य सुबह शाम चैतन्य बोलते, जिसको भी बोलते चैतन्य बोलते, चैतन्य 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 करते 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 कटवा से आगे ही नहीं गए और वापस अपने गांव में आगे चाकंडे। फिर अपनी पत्नी से मिले लक्ष्मी प्रिया, उनको भी बताया ऐसे महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो दोनों चैतन्य का उच्चारण करने लगे। तो पूरे गांव में बात फैली और सब लोग देखने लगे कैसे निरंतर दोनों लोग जो है चैतन्य चैतन्य बोल रहे हैं। तो गांव वालों ने उनका नाम गंगाधर भट्टाचार्य से चैतन्य दास रख दिया, क्योंकि निरंतर चैतन्य नाम का उच्चारण कर रहे थे, तो उनका नाम पड़ गया चैतन्य दास। अभी चैतन्य दास की कुछ समय तो वो अपने गांव पे रहे, उनकी फिर से इच्छा हुई कि अब महाप्रभु को मैं मिलने जाना चाहता। तो महाप्रभु ने संन्यास लेके बाद कहां गए कटवा से, मतलब फिर डायरेक्टली कहां पर रहने लगे संन्यास के बाद, जगन्नाथपुरी। तो चैतन्य दास जो है उनकी इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथपुरी जाता, तो जगन्नाथपुरी के लिए चल पाए। जगन्नाथपुरी पहुंचे तो महाप्रभु से मिले चैतन्य दास उनकी पत्नी, तो महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु को प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए, जगन्नाथ जी भी बहुत प्रसन्न होंगे आपको देखकर। महाप्रभु ने स्वागत करने के बाद फिर वो जगन्नाथपुरी में गए, मंदिर में गए, जब जगन्नाथ जी के दर्शन किए और फिर कुछ दिन जो है वो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहने लगे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को बुलाया उनके सेवक को और कहा कि ये चैतन्य दास और उनकी पत्नी ने जगन्नाथ जी से एक इच्छा मांगी है, लेकिन ये इच्छा उन्होंने मुझे नहीं बताई, लेकिन मुझ में और जगन्नाथ जी में कोई अंतर तो है नहीं, तो इच्छा तो मैं जानता हूं, और इच्छा क्या है कि ये संतान चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इनको एक बहुत अद्भुत संतान मिलेगी और वो संतान जो है वो एक मेरा ही अंश होगी और उनका नाम होगा श्रीनिवास। और जो मैंने रूप और सनातन को एक ज्ञान दिया है, भक्ति का ज्ञान, उसका प्रचार और प्रसार पूरे भारत भर में शास्त्रों के वितरण से करें। तो ये भविष्यवाणी उनके आने की और वो क्या सेवा करेंगे ये महाप्रभु उस टाइम करते हैं। और फिर गोविंद को कहते हैं कि जाओ चैतन्य दास को बोल दो कि उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी और वो वापस अपने गांव चले जाए। तो फिर ये कहकर वो गोविंद जाते हैं और चैतन्य दास को बोलते हैं, और ये चैतन्य दास अपनी पत्नी के साथ पूरी को छोड़कर वापस गांव में आ जाते हैं। और जैसे महाप्रभु ने कहा था, बड़े जल्दी ही उनके घर में एक बेटा पैदा होता है और उनका नाम क्या रखते हैं, श्रीनिवास। और ये बेटा इतना सुंदर होता है और इसके भी अंग बिल्कुल गौरवर्ण के होते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु के थे। और जब ये बेटा बड़ा होता है तो उसके भी लंबे लंबे हाथ होते हैं और ऊंचा कद होता है और लंबी नाक होती है और सुनहर सुवर्ण कांति होती है। तो जो भी उस बेटे को देखता था तो उनको महाप्रभु का स्मरण होता था। श्रीनिवास आचार्य को देखकर भी महाप्रभु का, उनका नाम था पहले श्रीनिवास, तो श्रीनिवास को देखकर लोगों को भक्तों को महाप्रभु का स्मरण होता था। फिर श्रीनिवास वहां पर जब बड़े हुए तो उनके माता पिता बचपन से ही उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते थे, तो श्रीनिवास का शुरू से आकर्षण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हुआ। और फिर श्रीनिवास आचार्य जो है वो महाप्रभु के बारे में जानना चाहते थे। और फिर जैसे एक बच्चा बड़ा होता है सबसे पहले शिक्षा लेता है, तो शिक्षा लेने के लिए गए और उनके जो अध्यापक थे उनका नाम था धनंजय विद्यावाचस्पति, तो उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। तो धनंजय विद्यावाचस्पति ने उनको सारी शिक्षा दी, लेकिन उनको ये साक्षात्कार हुआ उनको पढ़ाते पढ़ाते कि जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा ये जानते हैं, तो मुझे इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि वैसे सब जानते हैं, ये तो बस मुझे एक किरदार दे रहे हैं कि हाँ आप मेरे शिक्षक हैं और मैं उनका स्टूडेंट, लेकिन ये सब पहले से जानते हैं। फिर शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर श्रीनिवास को पता चलता है कि महाप्रभु के पार्षद हैं वो पास के गांव में रहते हैं वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, और चाकंडी के पास एक गांव था श्रीखंड, और वहां महाप्रभु के एक पार्षद थे उनका नाम था नरहरि सरकार। और नरहरि सरकार का एक विशेष गुण था, महाप्रभु के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि महाप्रभु का गुणगान करे महाप्रभु के सामने, लेकिन नरहरि सरकार को अलाउड था कि महाप्रभु के सामने कुछ भी बोल सकते थे गुणगान में। इसका मतलब महाप्रभु उनको बहुत प्रेम करते थे। तो जब श्रीनिवास को ये पता चला तो उनकी इच्छा हुई कि मैं नरहरि सरकार से मिलूं, पास में रहते हैं तो उनसे मिलने के लिए गए, फिर उनसे शिक्षा लेने लगे, उनको शिक्षा गुरु बनाए। और फिर नरहरि सरकार के संग में महाप्रभु के चरणों में उनका प्रेम और बढ़ते रहा और बढ़ते रहा। और फिर नरहरि सरकार ने एक दिन उनको कहा कि अब उनको एक खबर दी, ये चीज बोली कि महाप्रभु ज्यादा समय के लिए इस पृथ्वी में नहीं रहेंगे, तो मेरी इच्छा जल्दी से महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जाए। तो जब वो श्रीनिवास जी सुनते हैं थोड़े थोड़े घबरा से जाते हैं कि महाप्रभु का मुझे दर्शन करना है, तो वो जाने ही लगते हैं तो क्या होता है, उनके पिताजी बीमार पड़ जाते हैं और 7 दिनों में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उनको बहुत झटका लगता है, उनकी माता भी बहुत विलाप करने लगते हैं। अब माता अकेली हो जाती है तो वो माता को छोड़ के कैसे जाए महाप्रभु को देखने के लिए। तो नरहरि सरकार बोलते हैं, एक उपाय देते हैं, और वो उपाय देते हैं कि आप क्या करें कि माता को अपने पिताजी के पास छोड़ दें। और उनकी पिताजी होती है जाजीग्राम नाम के गांव में, तो माता को अपने नाना के यहां छोड़कर फिर एक भक्त के साथ जो है महाप्रभु को मिलने के लिए जाते हैं। और बहुत आतुर होते हैं कि महाप्रभु से पहली बार मिल पाऊंगा। श्रीनिवास का जो जन्म का साल है ये कोई पक्का बताना मुश्किल है, लेकिन महाप्रभु का अंतर्धान कौन से साल में हुआ था, महाप्रभु का प्रकट कौन से साल में हुए थे, 1534 में। तो ऐसा बताया जाता है जब महाप्रभु अप्रकट हुए तो श्रीनिवास की उम्र शायद 15 से 20 साल की थी। तो इस दृष्टिकोण से शायद उनकी उम्र, उनका जो प्राकट्य का साल है शायद 1514 या 1520 रहा हो। जय श्री राधा राधिकर भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव गौनिता की, जगत गुरु प्रभुपाद की। तो इससे अटकलें लगाएंगे कि श्रीनिवास आचार्य का जन्म वो साल हुआ। तो जब श्रीनिवास जा रहे थे महाप्रभु को मिलने के लिए तो उनकी आतुरता बढ़ती जा रही थी कि मैं जिनके बारे में बचपन से अपने माँ बाप से अपने गुरु वर्ग से सुनता आया, तो मैं महाप्रभु के दर्शन कर पाऊं। अब ये रास्ता बंगाल से उनको पूरी जाना था, करीबन 500 किलोमीटर का रास्ता मैंने गूगल मैप में डाला, फ्रॉम बंगाल टू पूरी। तो एक तो गाड़ी का डिस्टेंस आया, ट्रेन का डिस्टेंस आया, वॉकिंग डिस्टेंस आया, तो निश्चित रूप से पैदल गए होंगे, तो मैंने वॉकिंग डिस्टेंस में डाला, तो आया करीबन 500 किलोमीटर। तो करीबन 500 किलोमीटर का रास्ता उनको पैदल चलना था, तो वो पैदल जा रहे थे और महाप्रभु के दर्शन को प्राप्त करने के। लेकिन जैसे वो नजदीक जाते गए पुरी के, तो उनको एक दुख खबर मिली, और ये खबर मिली कि महाप्रभु अप्रकट हो गए। तो जैसे श्रीनिवास ने सुना तो इतना क्रंदन करने लगे, इतना क्रंदन करने लगे कि महाप्रभु को मैं देख भी नहीं पाऊंगा, कि मैं दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे और जल्दी पहुंच सकता था, मैं क्या कर सकता था। तो खूब विलाप करने लगते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि मैं आग में जलकर मर जाऊंगा, मैं अपना शरीर जो है जलती अग्नि में दे दूंगा। तो वो ऐसा कोशिश ही कर रहे होते हैं कि उनको एक दृश्य दिखाई देता है, और दृश्य में उनको महाप्रभु के दर्शन होते हैं, और महाप्रभु उनको रोकते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि आप जो है वो विलाप ना करें, आप वहां जाइए और आप गदाधर पंडित से मिलिए और उनसे भागवत सीखिए। जब महाप्रभु, जब श्रीनिवास आ रहे थे महाप्रभु से मिलने के लिए, तो महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं कि अभी बड़ी थोड़े दिनों में श्रीनिवास नाम के भक्त आएंगे, तब उनको भागवत सिखाइएगा। और साथ साथ महाप्रभु रूप और सनातन गोस्वामी कहां पर होते हैं, वृंदावन में, तो उनको चिट्ठी लिखते हैं कि श्रीनिवास भक्त को आप जो मैंने आपको ज्ञान दिया उस ज्ञान में उनको प्रशिक्षण दीजिए। तो एक चिट्ठी लिखते हैं रूप सनातन गोस्वामी को और एक आदेश देते हैं गदाधर पंडित को कि उनको भागवत सिखाए। तो जब श्रीनिवास को ये दर्शन प्राप्त होता है तो उनका कुछ हौसला, उनका कुछ उत्साह बढ़ता है और फिर वो जाते हैं पुरी, और पुरी पहुंचते हैं। तो पुरी पहुंचने के बाद वो कहां गए होंगे, तोटा गोपीनाथ, तोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित, अब गदाधर पंडित से मिलने के लिए जाते हैं। गदाधर पंडित से जब मिलते हैं, गदाधर पंडित वैसे ही विलाप कर रहे होते हैं महाप्रभु के अप्रकट्य में, उनको खूब वियोग कर रहे होते हैं और खूब क्रंदन कर रहे होते हैं, और इतना क्रंदन करते हैं कि जो भागवतम से उनको पढ़ाना था वो पूरी भागवत जो है वो उनके आंसुओं से धुल जाती है। तो जब श्रीनिवास वहां पहुंचते हैं और गदाधर पंडित को प्रणाम करते हैं और उनको कहते हैं कि महाप्रभु ये चाहते थे कि मैं आपसे भागवत सीखूं, तो कृपा करके वो भगवान महाप्रभु का जो इच्छा थी वो पूरी हो, तो कृपा करके हमें भागवत सिखाइए। गदाधर पंडित उनको कहते हैं कि जो है वो जो भागवत है वो पूरी धुल चुकी है, अब उसके अक्षर पढ़ नहीं सकते, तो मैं आपको पढ़ाऊं कैसे, तो इसके लिए एक और कॉपी चाहिए। तो पूरे पूरी में एक और कॉपी नहीं थी भागवतम की, तो फिर अब क्या विकल्प निकालना चाहिए। अब वो फिर से मायूस हो जाते हैं कि महाप्रभु ने कहा था मैं भागवत सीखूं तो मैं भागवत सीख नहीं पा रहा हूं क्योंकि कोई किताब नहीं। तब आप क्या कर सकते हैं? तो एक ही उपाय है कि आप क्या करें कि आप बंगाल में भी चिट्ठी लिखता हूं नरहरि सरकार को, तो वो एक और भागवतम की व्यवस्था करें। ठीक है, तो एक और चिट्ठी लिखते हैं, वो पहुंचती है नरहरि सरकार जो है, एक और भागवतम की व्यवस्था करते हैं और एक भागवतम किताब को वो अपने पास रखते हैं। अब किसी ना किसी दूत को भेजना पड़ता है कि वो किताब लेके आए। तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं ठीक है मैं ही जाके ले आता, फिर 500 किलोमीटर वापस उनको जाना था। तो जाने से पहले वो क्या करते हैं कि जो पुरी के जितने भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है उनकी इच्छा होती सबसे तो मिलकर जाऊं, तुम्हारे रामानंद राय से मिलते हैं पुरी में, और कौन कौन भक्त होता है, सार्वम भट्टाचार्य से मिलते हैं, महाराज प्रताप रुद्र से मिलते हैं, रामानंद राय से मिलते हैं, जो भी पुरी में वैष्णव है उनके दर्शन करना चाहते तो उनसे मिलते हैं। लेकिन समय बीतते रहता है, घड़ी चलती रहती जैसे अभी चल रही है, तो जड़ी घड़ी चलती रहती थोड़ा सा विलंब हो जाता हूं। और फिर वो 500 किलोमीटर चलते हुए बंगाल पहुंचते हैं, और जब बंगाल पहुंचते हैं तो नरहरि सरकार से मिलते हैं, तो उनको भागवत मिलती है। भागवतम लेके वापस ही आ रहे होते हैं तो उनको एक और खबर मिलती है। क्या खबर मिलती है? कि गदाधर पंडित का आप इकट्ठे हो गए। उनसे सहन ही नहीं हो पाता कि पहले तो महाप्रभु के दर्शन नहीं हो पाए, फिर जो महाप्रभु के आदेश है वो भी पालन नहीं कर पा रहे, मैं भागवत किससे सीखूंगा। वो इतने एक तरीके से स्पिरिचुअली मायूस हो जाते हैं कि वो डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और डीप स्टडी में चले जाते हैं। इतने में क्या होता है कि जो नित्यान प्रभु की भार्या होती हैं उनका क्या नाम होता है? जानवा माता। जानवा माता का वृंदावन परिक्रमा का चक्कर लगता है तो वो वृंदावन में होती है। जब वृंदावन में किनसे मिलती है? रूप और सनातन गोस्वामी से। जब रूप गोस्वामी गोस्वामी से मिलती है, अब एक चिट्ठी कहां गई थी महाप्रभु के? रूप और सनातन गोस्वामी के पास। तो रूप और सनातन गोस्वामी इंतजार कर रहे होते हैं कि श्रीनिवास कब आएंगे, तो जानवा माता को कृपा करके प्रार्थना करते हैं कि आप जब वापस बंगाल में जाएं तो श्रीनिवास को बोलें जल्दी आए और हमसे शिक्षा प्राप्त करें, महाप्रभु का आदेश था। तो जानवा माता एक खबर लेके वापस आती है, लेकिन जानवा माता एक चीज नोट करती है। क्या नोट करती है? कि रूप और सनातन गोस्वामी बहुत प्रमुख शास्त्रों की रचना कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर एक इच्छा पैदा होती है कि ये शास्त्र का प्रचार खासकर बंगाल उड़ीसा जो बाकी वैष्णव थे, हाँ वो भक्ति का तो पालन कर रहे थे लेकिन जो भक्ति का तत्व है शायद वो उससे वो उतने परिचित ना। तो जब वो शास्त्रों को देखती है रूप और सनातन गोस्वामी जो द्वारा उन्होंने लिखा हुआ था, उनकी इच्छा होती है कि इसका प्रचार बंगाल उड़ीसा और बाकी देश बाकी जगह पर भी हो, लेकिन कुछ बोलती नहीं, वो ऑब्जर्व करके वापस आ जाती है। और फिर नरहरि सरकार को बोलती है कि आप बोले श्रीनिवास को कि रूप और सनातन से जाके शिक्षा ग्रहण करें। तो उनके डीप मेडिटेशन से नरहरि सरकार उनको बोलते हैं कि आप जाइए और रूप और सनातन गोस्वामी से मिलकर उनकी शिक्षा प्राप्त करें। तो फिर अब श्रीनिवास जो है ये निर्णय लेते हैं कि वो अपने घर को छोड़कर वृंदावन की तरफ जाएं। लेकिन वृंदावन जाने के रास्ते में बहुत सारे महाप्रभु के पार्षद और भी होते हैं, तो उनकी एक और बार इच्छा होती है कि अब मैं जा ही रहा हूं तो बाकी पार्षदों से भी मिलते हुए जाऊं। तो सबसे पहले वो महाप्रभु के घर पे जाते हैं नवद्वीप में, और वहां पर कौन उनसे मिलता है? सच्ची माता मिलती है और विष्णुप्रिया, उनकी पत्नी से मिलते हैं विष्णुप्रिया से, तो उनका दर्शन करते हैं। और भी बहुत विस्तार है, मैं और वर्णन नहीं करूंगा। विष्णुप्रिया माता से मिलते हैं, फिर उसके बाद वो जाते हैं शांतिपुर। शांतिपुर जाते हैं तो किनसे मिलते हैं? नहीं, अद्वैत आचार्य जो है उनका अंतर्धान हो चुका होता है, तो अद्वैत आचार्य भी उनको गए हुए 3 साल हो चुके होते हैं, तो उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी और उनके बेटों से मिलते हैं। फिर वहां से वो और आगे बढ़ते हैं, फिर नित्यानंद के घर में जाते हैं, वहां किनसे मिलते हैं? जानवा माता से। फिर जानवा माता से मिलते हैं, जानवा माता कहते हैं आप यहीं पर ही हैं, आपको तो वृंदावन में होना चाहिए था, तो आप तुरंत जाइए रूप सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए। तो फिर उनको दोबारा रिमाइंडर मिलता है, तो वो रिमाइंडर लेके फिर आगे जाते हैं। फिर आगे वो मिलते हैं अभिराम ठाकुर से। फिर और रास्ते में इच्छा होती है कि द्वारा कटवा भी जाऊं, जहां महाप्रभु ने संन्यास लिया, फिर वो कटवा भी जाते हैं। फिर ऐसे कहीं पार्षद घूमते घूमते फिर उनकी इच्छा होती है कि चलो एक बार में माता जी से मिलते हुए चले जाऊंगी, माता जी बीमार थी तो वापस जाजीग्राम आते हैं, और जाजीग्राम के पास ही शिखंड होता है, तो नरहरि सरकार को भी प्रणाम करते हुए जाओ तो नरहरि सरकार को भी मिलते। जब नरहरि सरकार देखते हैं उनको तो कहते हैं, अरे आप अभी यहाँ पर हैं, आपको तो वृंदावन में होना चाहिए था, तो आप जाइए वृंदावन, जाइए तुरंत। तो जब उनको दूसरी बार रिमाइंडर मिलता है तो फिर वो वृंदावन के लिए तेजी से चलते हैं। अब बंगाल से वृंदावन का रास्ता कितना है, फिर मैंने गूगल मैप में सर्च किया, बंगाल टू वृंदावन तो निकला सिर्फ 1300 किलोमीटर। तो उनको फिर तीन ऑप्शन आए, एक गाड़ी का, एक ट्रेन का, एक पैदल का। तो मैंने जब पैदल में देखा तो देखा है 1300 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट ट्रिपल रास्ता था। तो फिर वो वृंदावन पे निकले, वो कई महीने लग गए वृंदावन पहुंचते पहुंचते। फिर वो रास्ते में आता बनारस, वहां पर किन से मिलते हैं, तपन मिश्रा चंद्रशेखर आचार्य से मिलते। ऐसे फिर प्रयाग जाते हैं, जहां इलाहाबाद में महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी। ऐसे करते करते जैसे ही वो बस 4 दिन रह जाते हैं वृंदावन पहुंचने के लिए, तो उनको एक और खबर मिलती है। तो क्या खबर मिलती है कि सनातन गोस्वामी को अप्रकट हुए 3 महीने हो गए। ओहो, सिर्फ बर्दाश्त नहीं होता, वो और भागते हैं। जैसे ही मथुरा पहुंचते हैं तो उनको और खबर मिलती है कि रूप गोस्वामी अप्रकट हो गए। ओह, बस अब उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। अब वो सोचते हैं कि बस मैं और आगे नहीं जाऊंगा, इस पेड़ के नीचे ही बस महाप्रभु का को याद करते करते मैं शरीर को छोड़ दूं। तो पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उनको एक और दृश्य दिखाई देता है आसमान। अब किसका दृश्य दिखाई देता है, रूप सनातन। तुमने कहा आप वियोग मत करें, अब और विलंब ना करें, अब तुरंत जाइए और जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिले, और देरी ना करें। तो फिर उसके बाद जब उनको ऐसा दृश्य प्राप्त होता है तो फिर से उनका हौसला बढ़ता है, और फिर तुरंत वो वृंदावन में जाते, और वृंदावन में सबसे पहले गोविंद देव जी के मंदिर में जाते। तो गोविंद देव जी का मंदिर अधूरा बना होता है, क्योंकि गोविंद देव जी का मंदिर ऐसा बताया गया कि ऑलमोस्ट 1590 में पूरा हुआ था, लेकिन वहां गोविंद देव जी थे, उनका दर्शन करते। तो वहां पर उनकी भेंट होती है जीव गोस्वामी से। बस जैसे ही जीव गोस्वामी को देखते हैं, बस वो उनको आलिंगन कर लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको छोड़ते नहीं है कि ये आप प्रकट ना हो, ये ना कहीं जाए। तो जीव गोस्वामी सब भेंट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। फिर जीव गोस्वामी उनको अपने मंदिर ले आते हैं, राधा दामोदर मंदिर। और राधा दामोदर मंदिर में उनकी भेंट होती है गोपाल भट्ट गोस्वामी से, और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको पूछते हैं, आप कहाँ थे, रूप और सनातन आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आपकी प्रतीक्षा करते करते जो है वो आप प्रकट हो गए। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको अपने मंदिर ले जाते हैं, कौन से मंदिर में, राधा रमन मंदिर। और वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको उनका सिद्ध स्वरूप बताते हैं और कहते हैं कि मैं गुण मंजरी हूं कृष्ण लीला, और आप मेरे नित्य सेविका मणि मंजरी। तो उनको सिद्ध स्वरूप भी बता देते, और फिर मंजरी साधना के बारे में उनको बताते हैं, उनको भी शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और फिर कहते हैं आप जीव गोस्वामी से बाकी प्रशिक्षण लीजिए। और जब वो फिर वापस आकर जीव गोस्वामी से प्रशिक्षण लेना शुरू करते हैं तो जीव गोस्वामी के ऑलरेडी एक स्टूडेंट उनके पास पढ़ रहे होते हैं, उनका क्या नाम होता है, नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर 1 साल से जीव गोस्वामी से ऑलरेडी शिक्षा ले रहे होते, तो वो पहुंचते हैं, और थोड़े दिनों में एक और भक्त पहुंच जाते हैं, वो कौन है, दुखी कृष्णदास। वो पहुंच जाते हैं, उन तीन की जोड़ी मिल जाती है, और फिर जीव गोस्वामी उनको गौरव वैष्णव सिद्धांत में पूर्ण रूप से प्रशिक्षण करते हैं। और ये भी साधारण शिष्य नहीं होते, जीव गोस्वामी पूरी शिक्षा ग्रहण करके उसको समझ लेते हैं। फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद जीव गोस्वामी उनको वृंदावन मथुरा मंडल परिक्रमा में भेजते हैं राघव पंडित के साथ। और जो परिक्रमा करके आते हैं, इतनी देर में एक संदेश आ जाता है, कहां से, जानवा माता से। और जानवा माता एक आग्रह करते हैं जीव गोस्वामी से कि जो रूप और सनातन के जो ग्रंथ थे, मेरा आपसे इच्छा है, आपसे प्रार्थना है कि इनको जो है बंगाल उड़ीसा में भेजिए, इनका प्रचार कीजिए। तो वो जब आदेश आता है जानवा माता का, और जब ये मंडल परिक्रमा मथुरा मंडल परिक्रमा वृंदावन मंडल परिक्रमा करके आते हैं, जीव गोस्वामी अब उनको एक मिशन असाइनमेंट देते हैं कि आपको क्या करना है, जो आपने सीखा है और जो शास्त्र है, इसको आपको बंगाल उड़ीसा और पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार करना है। तो अब गौड़ा वैष्णव संप्रदाय की पहली संकीर्तन पार्टी तैयार होती है, जिसमें होते हैं श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर। और जीव गोस्वामी इसकी बहुत गहरी तैयारी करना शुरू करते हैं। तो उनके एक शिष्य होते हैं, बहुत धनाढ्य शिष्य होते हैं मथुरा के, तो वहां से उनको बोलते हैं कि आप एक बड़ी सी बुलक काट इसकी व्यवस्था कीजिए। तो एक काट, बड़ी सी काट अरेंज करते हैं और चार बैल की व्यवस्था करते हैं और 10 सैनिक की व्यवस्था करते हैं और 2 जो गाड़ी को चलाएंगे, और इसमें वो जो है बहुत बड़ा संदूक लेके आते हैं लकड़ी का, और उसमें बहुत ध्यान पूर्वक श्री रूप और सनातन गोस्वामी के ग्रंथों को रखते हैं। और उनको पता होता है कि इसकी प्रतिक्रिया बहुत कम है, अगर इनको कुछ हो गया तो फिर वापस ये जो ज्ञान का भंडार है ये हम खो ना दें। तो बहुत ध्यान पूर्वक इन ग्रंथों को उस संदूक में रखते हैं और फिर मोम से उसके ऊपर ताला लगाते हैं और संदूक को जो है उस काट पे रखते हैं, और फिर जो है वो 3 वैष्णवों को ये सेवा देते हैं कि आप इसका प्रचार करें। तो फिर ये 4 बैल, 2 जो बैलों को चलाने के लिए और 10 सैनिक और ये 3 आचार्य, तो 15 लोग और 4 बैल निकल पड़ते हैं बंगाल के लिए। तो जीव गोस्वामी को उनका वैराग्य सहन नहीं होता, ये सब सब जितने भी भक्त अपने दीक्षा गुरु से जाकर आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद लेने के बाद फिर वे बंगाल की तरफ प्रस्थान करते हैं और सब पूरा वृंदावन जो है उनको सी ऑफ करने के लिए आता है एक तरीके से, और फिर सबका आशीर्वाद लेकर ये बंगाल की तरफ जाते हैं। उनको कई महीने लग जाते हैं वृंदावन से बंगाल, दोबारा से 1300 किलोमीटर, तो 1300 किलोमीटर करते हुए जाते हैं। तो जब अब पूरी स्टोरी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट कैसे आता है कि जब वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं तो बंगाल से पहुंचने के लिए पहले एक जगह आती है गोपालपुर नाम का, और गोपालपुर के बिल्कुल सटीक जो एक गांव होता है उसका नाम होता है वान विष्णुपुर, और वान विष्णुपुर का एक राजा होता है और उस राजा का नाम होता है वीर गंभीर। वैसे उसका नाम होता है हम वीर, मतलब हम वीर, मैं वीर हूं, उसका वैसे नाम होता है हम वीर, लेकिन लोग उसको भीरम वीर बुलाते हैं। ये राजा बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है। ये राजा क्या करता है कि इसके पास कुछ 100-200 डकैत होते हैं और एक ज्योतिषी होता है। तो ये राजा क्या करता है, राजा बनता कैसे है कि ये ज्योतिष इसको ये बताता है कि यहां जो भी यात्री निकल रहा है इसके पास कितना धन है, ये वो अपने ज्योतिष से माप करके राजा को बताता है। और राजा क्या करता है, फिर प्लानिंग करता है डकैतों के साथ, और डकैत जो है यात्रियों को लूटते हैं और सब जो लूट है उससे फिर अपना राज्य को चलाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो यात्रियों को लूटा करते थे। तो अब जब वो उनके क्षेत्र में ये 15 लोग और 4 बैल पहुंचते हैं उनके सर्कमफ्रेंस में, उनके जोन में, तो फिर खबर पहुंचती है, डकैत बोलते हैं देखो एक और यात्री, आप इसकी कैलकुलेशन करो कि इनके पास क्या क्या है। तो ज्योतिषी जो अपना ज्योतिष चार्ट निकालता है और फिर गणना करना शुरू कर देता है कि आप कैलकुलेशन करना शुरू करता है कि इनके पास कितने रत्न हैं, कितने मनी हैं, उनकी क्या कीमत है। तो जब अपने कैलकुलेटर में डालता है तो ई साइन आ जाता है, मतलब यह है कि उसकी वैल्यू नहीं निकलती। तो ज्योतिष बार बार कैलकुलेटर में डालता है, बार बार वैल्यू डालता है, उसकी वैल्यू असीमित निकलती है। वो राजा को बुलाता है और राजा को बोलता है राजा ये जो यात्री आ रहे हैं इनके पास इतना धन है, उसकी इतनी कीमत है कि सारे साइंटिफिक कैलकुलेटर फेल हो गए, इनकी कीमत निकाली नहीं जा सकती और मेरे जो कैलकुलेशन है वो फेल हो रहा है, इसकी गिनती नहीं आ रही है कि इसकी कितनी कीमत है। तो निश्चित रूप से इनके पास इतना सामान है जो सोना हीरे चांदी से भी कहीं गुना ज्यादा मूल्यवान। तो राजा जो सुनता है तो सोचता है कि बस अब इन्हीं की इंतजार थी, ये धन अगर मिल जाए तो शायद और लूट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वो पूरे डकैत जो है सतर्क हो जाते हैं और प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, बस अब ये लूट अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाए तो बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर वो कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं कैसे जो है ये संदूक को चुराया जाए। तो पहली बार तो कोशिश करते हैं, वो छुप कर घेर कर वो जो है कोशिश करते हैं कि संदूक को चुरा लिया जाए, लेकिन पहली बारी में कर नहीं पाते। फिर वो मौका ढूंढ रहे होते हैं, अब इन किसी को पता नहीं चलता कि उनके पीछे डकैत लगे हैं, वो तो अपने आराम से भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे होते हैं। तो जब वो गोपालपुर पे आकर रुकते हैं तो वहां नदी होती है, तो रात हो जाती है, नदी में विश्राम करते हैं। तो रात के अंधेरे में जो है डकैत आते हैं और बिना किसी आवाज के इस संदूक को चुरा के ले जाते हैं। जब सुबह होती है और ये सब तीन चार उठते हैं तो क्या देखते हैं, चार बैल हैं, 10 सैनिक हैं, बैल को चलाने वाले भी हैं, लेकिन उस कार्ट में क्या नहीं है। जब वो उसको ये देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है क्या हुआ, रात को तो रुके थे और रात को तो कोई आया भी नहीं था, ये संदूक कहाँ गया। तो आसपास देखते हैं, आवाज लगाते हैं, सबको उठाते हैं, वो संदूक नहीं मिलता। तो सब आचार्य जो है क्रंदन करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा कैसा हो गया, और इसकी और कोई कॉपी भी नहीं थी हमारे पास, तो ये ग्रंथ जो स्वयं रूप गोस्वामी ने लिखे थे, जो सनातन गोस्वामी ने लिखे थे, ये कैसे प्राप्त होंगे। तो सभी जो है वो क्रंदन कर रहे होते हैं। इसमें सबसे वरिष्ठ होते हैं श्रीनिवास। श्रीनिवास आचार्य सबका हौसला बढ़ाते हैं, कहते महाप्रभु के आंदोलन में कोई भी व्यक्ति जो है वो बाधा नहीं डाल सकता, ये भगवान का आंदोलन है, निश्चित रूप से भगवान का कोई प्रयोजन होगा। तो आप क्या करें कि आपने जो शास्त्र सीखे हैं, जो जीव गोस्वामी शिक्षा प्राप्त की है, आप कृपा करके यात्रा पूरी करें और इसका प्रचार करना शुरू करें, और मैं स्थान पर रुककर इन शास्त्रों को ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर बाकी लोगों के साथ यात्रा आगे में चले जाते हैं, आगे प्रचार करने के, और श्रीनिवास आचार्य वहां रुक जाते हैं उन ग्रंथों की तलाश। दूसरी तरफ राजा के महल में जब संदूक पहुंचता है तो राजा के मुंह से लाल टपक रही होती कि यहां तो अब ये चीज मिलेगा, वो चीज मिलेगा। तो बहुत बेतबरी से राजा जो है संदूक के पास जाता है, ताला को तोड़ता है, और जैसे ही उस संदूक को खोलता है तो क्या दिखाई देता है, उसको कोई मनी या रत्न तो दिखाई देते नहीं, उसको क्या दिखाई देता है, कुछ किताबें। तो उसको सबसे पहला झटका तो ये लगता है, तो उसको किस पे क्रोध आता है, ज्योतिष पर, इसकी कौन सी कैलकुलेशन थी। तो किताब को देखता है, तो पहली किताब उठाता है, जब पहली किताब उठाता है और खोलता है तो उसमें एक हस्ताक्षर को पढ़ता है, किसका हस्ताक्षर होता है, रूप गोस्वामी। तो उनके सिर्फ उनके हैंडराइटिंग से बहुत प्रभावित हो जाता है। फिर वो पलट के खोलता है और पढ़ना शुरू कर देता है, और पढ़ते 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 उसको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका एक अद्भुत सा आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाता है। और एक कई शास्त्रों में लिखा है कि उसी वक्त से रूप गोस्वामी के हस्ताक्षर को देखकर उनके ग्रंथों को पढ़कर उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो लेकिन वो उसको रोकता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो किताब को बंद कर देता है और रख देता है वापस संदूक को, बंद कर देता है, कहता रख दो इसको। तो जो है बाकी जो दिक्कत है उनको भी समझ में नहीं आता, तो संदूक को रख देते हैं। जब राजा रात को लेकिन विचार कर रहा होता है कि ये मैंने क्या पढ़ा, मुझे ऐसा क्यों ऐसे अनुभव हो रहा है, उसको लगता है उसका पूरा भौतिक जीवन खत्म हो गया और अब उसकी एक इच्छा होती है कि भगवान की भक्ति करूं। अब लेकिन वो रह रहा होता है डकैतों के राजा में, राज्य में, तो वो भक्ति कैसे करे उसको समझ में नहीं आता। तो जब रात को सोता है तो सपने में एक ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण कहते हैं कि राजा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, तुमने चोरी की, लेकिन बड़ी जल्दी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, और मिलने के बाद जो है जितने भी शास्त्र हैं ये मेरे, मैं तुमसे ले जाऊंगा, और फिर तुम मेरी शरण लोगे और शरण लेने के बाद मेरे शिष्य बन जाओ और तब तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो राजा इस अद्भुत सपना देखते पे, वो समझ में नहीं आता राजा को ये कौन थे, तो सपना भी समझ में नहीं आता, लेकिन राजा प्रतीक्षा करता है कि ऐसा कुछ सपना शायद पूरा हो, तो राजा इंतजार करने लग जाता। दूसरी तरफ श्रीनिवास आचार्य अब ढूंढते ढूंढते एक महाब्राह्मण होता है कृष्ण वल्लभ करके, तो ब्राह्मण के घर चले जाते हैं और ब्राह्मण के घर में रहना शुरू कर देते, किसी को बताते नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। तो ब्राह्मण से उनकी दोस्ती हो जाती है, और ब्राह्मण जब उनकी भक्ति को देखता है तो बहुत प्रभावित होता है कि बहुत प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है। तो ब्राह्मण बातों बातों में एक चीज बताता है और वो कहता है कि यहां पर जो हमारे राजा है वो जो है हर रोज भागवती कथा करते हैं, तो आप चलिए मेरे साथ आप भागवती कथा सुनिए। तो श्रीनिवास आचार्य को वैसे भागवत में बहुत रुचि होती है, कि ठीक है आइए भागवत का कथा सुनते हैं, तो भागवत की कथा सुनने चले जाते हैं। तो पूरी सभा होती है, राजा बैठे होते हैं, सब डकैत बैठे होते हैं, तथा कथित के मंत्री बैठे होते हैं, और ये ब्राह्मण आते हैं और श्रीनिवास आते हैं और भागवत के ऊपर चर्चा हो रही होती है। और उन्हीं डकैतों में एक व्यास आचार्य बन जाते हैं जो कि भागवत के ऊपर कथा कर रहे होते हैं। तो भागवत की टीका में से वो भागवत का श्लोक पढ़ते हैं और कुछ टीका बोलते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य वो अनाप शनाप सुनते हैं तो उनको सहन नहीं होता कि ये क्या, ये भागवतम है, ये क्या भागवत का वर्णन है, इसमें श्रीधर स्वामी का कहाँ वर्णन है, रूप और सनातन स्वामी का कहाँ वर्णन है, पूर्वताचार्यों का कहाँ वर्णन है। तो बहुत उनको ग्लानी होती है कि ये कैसे भागवत का चर्चा है, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। फिर अगले दिन फिर ब्राह्मण के साथ जाते हैं। ऐसे करते करते 14 दिन हो जाते हैं। 14वें दिन जैसे व्यास आचार्य अपनी भागवत टीका पूरी करते हैं तो बहुत दिनों में तो पूर्वक उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कैसा वर्णन है ये, जो भी आप बोल रहे हैं ये परंपरा के विहीन है, परंपरा के अनुसार नहीं है। ना आप श्रीधर स्वामी की टीका के ऊपर बोल रहे हैं, ना कोई पूर्वती आचार्य की टीका के ऊपर बोल रहे हैं, कैसा वर्णन आप कर रहे हैं, ये परंपरा के अंदर नहीं है। तो व्यास आचार्य को देख सुना सुना कर देते हैं। लेकिन व्यास आचार्य के पीछे कौन होते हैं, राजा। राजा सुन लेते हैं तो राजा जो है बड़े उनके अंदर ये उनको ये चीज बड़ी अटपटी सी लगती है। राजा भी कुछ कहते नहीं। फिर राजा चले जाते हैं, व्यास आचार्य भी चले जाते हैं, श्रीनिवास आचार्य भी चले जाते हैं। अब 15 दिन दोबारा श्रीनिवास आचार्य आते हैं और इस बार व्यास आचार्य जो है वो राधा कृष्ण की रास लीला का वर्णन कर रहे होते हैं। और फिर रास लीला के अंदर जैसे ही प्रवेश ही कर रहे होते हैं श्रीनिवास आचार्य खड़े हो जाते हैं और उनको रोक देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो रास का वर्णन करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी अपराध करेंगे राधा और कृष्ण के चरणों में, और जितने भी लोग उसका श्रवण करेंगे वो भी अपराध करेंगे। तो उनको तुरंत रोक देते हैं और कहते हैं कि आप रासलीला का वर्णन नहीं कर सकते बिना पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं का वर्णन करते हुए। तो व्यास आचार्यों को उनके अहंकार पर ठेस पहुंचता है कि ऐसा कैसे कोई व्यक्ति मुझे रोक सकता है, अब तक तो सब मेरी प्रशंसा ही करते थे। तो वो उनको जो है सुनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन राजा व्यास आचार्य को रोक देते हैं, टोक देते हैं और कहते हैं रुको रुको रुको, ऐसा कैसे है कि अब तक तो किसी ने आपको टोका नहीं और ये व्यक्ति टोक रहा है, तो निश्चित रूप से कोई बात तो जरूर होगी। तो व्यास आचार्य कहते हैं कि बात तो कुछ नहीं है, अगर इसको ज्यादा पता है तो ये भागवत के ऊपर कुछ बोले। तो राजा बोलते ठीक है, इनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर आप बोल सकते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि कुछ गलती कर रहे हैं तो आप बताइए क्या सही। अब बस श्रीनिवास आचार्य को मौका मिलता है भागवतम के ऊपर बोलने का। तो वो ना सिर्फ सभी पूर्ववर्ती आचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए उनकी टीकाओं का वर्णन करते हुए भागवतम के बारे में बोलते हैं, साथ साथ में जो उनका साक्षात्कार था वो भी बोलते हैं, और उनके डीप स्कॉलरशिप और डिवोशन और उनकी अथॉरिटी को देखकर और उनकी मधुर वाणी को सुनकर सब जो है इतने प्रभावित हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं। यहां तक का ऐसा वर्णन है कि जो उस सभा के जो खंबे थे और पत्थर थे वो भी पिघलने शुरू हो जाते हैं। तो जब ऐसा होना शुरू हो जाता है कि सब लोग जो है कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में सुनते हैं और उनके मधुर वाणी को सुनते हैं और जो है उनके पांडित्य को सुनते हैं, तो सब बहुत प्रभावित हो जाते हैं, समझ जाते हैं ये व्यासचार्य तो धोखेबाज थे, असली में भागवतम को ये व्यक्ति जानते हैं। जैसे भागवतम को रखते हैं सब तालियां मारना शुरू कर देते हैं और सब फिर श्रीनिवास आचार्य की शरण लेते हैं, और राजा खासकर बहुत प्रभावित हो जाता है और उसको लगता है निश्चित रूप से कि जो मुझे सपना आया था उन्हीं के बारे में आया था, ये मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। तो राजा जो है उनको प्रणाम करते हैं, उनके बहुत आदर सम्मान करते हैं और फिर उनको रात को खाने में बुलाते हैं। श्रीनिवास आचार्य कहते हैं मैं तो दिन में एक ही बार खाता हूँ। तो राजा कहते हैं ठीक है, अब एक ही बार खाइए लेकिन शाम को फलाहार कर लीजिए, फल पे खा लीजिए। तो श्रीनिवास जो है वो फल खाने के लिए राजा के महल में जाते हैं, राजा उनकी खूब सेवा करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं और राजा कहते हैं कृपा करके एक रात जो है मेरे साथ सोए। तो श्रीनिवास आचार्य राजा के साथ वाले कमरे में सोते हैं। तो जैसे ही राजा विश्राम करने जाते हैं तो उनको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा पूरी रात भर
उनको आवाज आती है कि कोई रात भर कोई जप कर रहा है, और उनको आवाज आती है कि साथ वाले कमरे से ही आवाज आ रही है। तो उनको लगता है कि सारी रात भर श्रीनिवास आचार्य भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो कहते हैं, अरे कैसे भक्त है भगवान के, पूरी रात भर जप करते रहे। तो सब और भी उनका आदर बढ़ जाता है। फिर श्रीनिवास आचार्य को दोबारा बुलाते हैं, कृपा करके आप फिर से आके भागवत पर बोले। फिर श्रीनिवास आचार्य फिर भागवतम पे बोलते हैं, तो सबके हृदय में भक्ति का ऐसा संचार होता है कि सब भक्ति से प्लावित हो जाते हैं, और जैसे वो टीका खत्म करते हैं सब उसकी शरण ले लेते हैं। यहां तक कि व्यास आचार्य भी उनके पैर पड़ जाते हैं, उनको कहते हैं कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जो ब्राह्मण उनके साथ आए थे वो भी कहते हैं मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। राजा बोलते हैं मुझे शिष्य बना लीजिए। राजा की पत्नी बोलती है, राजा का बेटा बोलता है, राजा की जितनी प्रजा जो है वो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य बनने को तैयार हो जाते हैं। और एक ही रातों रात जो है पूरा का पूरा राज्य जो है वो गौर वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लेता है। फिर राजा उनको बोलते हैं, राजा बोलते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, कृपा करके मेरे एक सेवा दीजिए। जब वो ये बोलते हैं कि मुझे एक सेवा दीजिए, तब श्रीनिवास आचार्य को याद आता है कि उनको वो शास्त्र ढूंढने थे। तो राजा को बोलते हैं कि अगर आप दक्षिणा देना चाहते हो, मैं एक दक्षिणा चाहता हूं कि जो मेरे पूज्य राधे देव हैं श्री रूप सनातन और जीव गोस्वामी जो शास्त्र हैं वो कहीं ना कहीं किसी ने व्यक्ति ने चोरी कर लिया, तो उस चोर को मैं ढूंढना चाहता हूं। वो चोर कहाँ है और वो चोरी कहाँ हुई गई और वो ग्रंथ कहाँ है। तो जब राधा वो सुनता है तो जो है वो कांपने लग जाता है क्योंकि चोर वही होता है। तो वो बार बार प्रणाम करना शुरू कर लेता, उनसे माफी मांगता है, कहता है वास्तव में वो पापी वो अधम वो चोर मैं, मुझसे ही अपराध हुआ ये चोरी करते, वे मुझे शर्म करें, मुझे माफ करें, लेकिन अगर ये चोरी कर मुझे आपकी संगति प्राप्त हुई है तो ये चोरी करने के लिए मैं बार बार तैयार हूं कि मैं बार बार ये चोरी करूंगा चाहे मुझे नर्क जाना पड़े, क्योंकि इस चोरी से मुझे आपकी संगत प्राप्त, आपकी शरण मिली। तो श्रीनिवास आचार्य हंसने लग जाते, कहते तुम चिंता मत करो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण है, तो मुझे दिखाओ कहाँ है वो ग्रंथ। तो राजा उनको लेकर जाता है। श्रीनिवास आचार्य की उत्सुकता और उनका उत्साह और बढ़ना शुरू हो जाता है, इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ वो रूप और सनातन गोस्वामी के ग्रंथ मुझे मिलने वाले हैं। तो बहुत तेजी से उस कमरे में जाते हैं, जैसे ही कमरे में उनको शास्त्रों के दर्शन होते हैं, उस संदूक का दर्शन होता है, तुरंत प्रणाम करते हैं और राजा को बोलते हैं आप सब आरती का सामान लेके आइए। और फिर श्रीनिवास आचार्य उन ग्रंथों की आरती करते हैं और धूप से दीप से तुलसी से उन सभी शास्त्रों की आरती करते हैं। और आरती करने के बाद प्रणाम करने के बाद वो राजा को, राजा की पत्नी को, उसके बेटे को, उस ब्राह्मण को, व्यास आचार्य को, सभी को दीक्षा देते हैं। और फिर सबको उस राजा का नाम फिर वीरमवीर से पड़ता है हरिचरण दास। और बीच में जब वो ग्रंथ चोरी हो जाते हैं तो जीव गोस्वामी को चिट्ठी लिखते हैं कि ये घटना घटी, और जब ये घटना घटती है कि उसको ग्रंथ वापस मिल जाते हैं और एक राजा जो है वो भक्त बन जाता है, तो फिर दोबारा चिट्ठी लिखते हैं जीव गोस्वामी को। और फिर जीव गोस्वामी की चिट्ठी के उत्तर में वो राजा का एक नया नाम देते हैं और कहते हैं इस राजा को का नाम चैतन्य दास भी होगा। तो राजा के दो नाम बन जाते हैं, हरिचरण दास और चैतन्य दास। और फिर राजा अब बोलता है कि आप बताइए कि मेरे लिए क्या सेवा है। तो अब श्रीनिवास आचार्य कहते हैं शास्त्र तो हमें प्राप्त हो गए, अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसका प्रचार करें पूरे आपके राज्य में। तो राजा कहते ठीक है आपकी इच्छा है तो पूरे राज्य में प्रचार होगा, तो बस जो वान विष्णुपुर पैनल कोर्ट के हिसाब से अब कुछ नए नियम बनते हैं, नए कानून बनते हैं। और कानून क्या बनते हैं, जो भी इस राज्य में रहेगा उसको हर रोज 16 माला का जप करना पड़ेगा। उसमें ऐसा वर्णन है, 16 माला तो नहीं वर्णन है, पर ऐसा वर्णन है कि हर किसी को, हर राज्य के नागरिक को भांग की माला का जप करना पड़ेगा, यह कंपलसरी हो जाता है। और अगर किसी को स्वीकार नहीं है तो वो राज्य को छोड़ सकता है। तो हर नागरिक को जो है वो माला करने का नियम मिलता है। और फिर जो है वो चार नियमों का प्रचार होता है और भांग की भक्ति का प्रचार होता है, सब भांग की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। और फिर राज्य के मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में भान के अद्भुत अद्भुत मंदिर बनते हैं, बहुत सुंदर मंदिर बनते हैं। और फिर भान के वेदों की स्थापना होती है और सब गौड़ वैष्णव धर्म को स्वीकार करते हैं। तो अपने आप एक बहुत बड़ी खबर होती है कि जो पहला प्रचार का परिणाम आया वो क्या आया, कि इतने बड़े राजा जो है वो गौड़िया वैष्णव बन गए और उनके साथ साथ जो है वो सारी की सारी प्रजा भी बन गई। तो प्रभुपाद जी भी कहते थे इफ यू वॉन्ट टू शूट शूट फॉर द रिनोसरस। अगर एक प्रधानमंत्री या एक राष्ट्रपति या एक राजा अगर भक्त बन जाए तो बाकी नागरों के लिए भक्ति स्वीकार करना बहुत आसान है। तो सब भक्त बन जाते हैं। समय थोड़ा ऊपर हो गया ना, थोड़ा और कितना समय ले सकते हैं? 5 मिनट और 9:05 9:10 तक। पांच मिनट मान लेते क्षमा कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा समय और होगा। तो पूरा प्राण जो है वो भक्ति को स्वीकार कर लेता है और फिर जो है वो सिर्फ जो है ये खबर मिलती है। और जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत पसंद होते हैं वृंदावन में और उनको बहुत गर्व होता है श्रीनिवास आचार्य के। फिर बीच में श्रीनिवास आचार्य की इच्छा होती है कि नरोत्तम और श्यामानंद प्रभु ये क्या कर रहे हैं उनके बारे में जानने की इच्छा होती है। तो फिर वो उनसे मिलने की इनकी इच्छा करते हैं। फिर बाद में उनको एक खबर मिलती है कि नरहरि सरकार जो है बीमार पड़ गए। तो फिर वो राजा को वहां पर आदेश देकर नरहरि सरकार से मिलने के लिए जाते हैं। नरहरि सरकार से मिलते हैं, फिर नरहरि सरकार उनके मौजूदगी में अपने आखिरी सांस लेते हैं, फिर वो अप्रकट हो जाते हैं। फिर नरहरि सरकार उनको बोलते हैं शादी करने के लिए, श्रीनिवास आचार्य शादी करते हैं, उनकी संतान की उत्पत्ति होती है, फिर और प्रचार करते हैं, उनके कई शिष्य बनते हैं। फिर वो श्यामानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर से मिलते हैं और फिर वो वहां से बंगाल से होते हुए वृंदावन पहुंचते हैं। जब वृंदावन पहुंचते हैं तो जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनका एक बहुत बड़ा स्वागत करते हैं और सब वैष्णव को जब ये पता चलता है कि इतने बड़े राजा भक्त बन गए, सबका उत्साह और बढ़ता है, उनको बहुत खुशी होती है। और फिर जीव गोस्वामी से फिर वो मिलकर दोबारा प्रशिक्षण लेते हैं। अब ट्रेनिंग पार्ट टू, ट्रेनिंग एडवांस्ड ट्रेनिंग शुरू होती है। फिर जीव गोस्वामी से ट्रेनिंग और प्रशिक्षण लेते हैं, कैसे और शिक्षा लेनी और प्रचार करना है। फिर दोबारा शिक्षा प्राप्त करके फिर वापस राजा के पास आते हैं और जब इस बार राजा के पास आते हैं तो प्रचार शैली और बढ़ जाती है। राजा बाकी क्षेत्रों में भी जाकर बंगाल उड़ीसा बाकी भारत के क्षेत्रों में जाकर गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का और प्रचार करते हैं। और ऐसे प्रचार करते करते फिर अब सिर्फ श्रीनिवास आचार्य गोष्ठानंदी नहीं होते, भजनानंदी भी होते। फिर ऐसा वर्णन आता है कि प्रचार तो फैल रहा होता है लेकिन साथ साथ वो अपने भजन में भी और ध्यान देते हैं और फिर अपने मंजरी भाव पर ध्यान देते हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि वो जब ध्यान लगाते हैं तो एक बारी जो है वो 3 दिन उनको हो जाते हैं समाधि में और 3 दिन वो समाधि से बाहर नहीं आते। सब चिंतित हो जाते हैं कि श्रीनिवास आचार्य 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं तो कहाँ चले गए। तो सबको लगता है कि एक ही व्यक्ति जो उनको भा ला सकता है वो उनका शिष्य है रामचंद्र कविराज। तो उनको बुलाते हैं, रामचंद्र कविराज समाधि लेते हैं, वो उस लीला में जाते हैं जहाँ श्रीनिवास आचार्य जिस लीला में गए। और वो लीला की थी कि राधा कृष्ण जल क्रीड़ा कर रहे थे तो राधा रानी का जो नाक का आभूषण था वो नदी में गिर जाता है। तो सब जितने भी मंजरी वो ढूंढने लग जाते हैं। राधा रानी इशारा करती है रूप मंजरी को, रूप मंजरी इशारा करती है गुण मंजरी को जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी इशारा करते हैं मनी मंजरी को जो कि श्रीनिवास आचार्य। तो वो सब ढूंढ रहे होते हैं नुपुर को। तो 3 दिन हो जाते हैं नुपुर ही नहीं मिल रहा होता इसलिए वो समाधि से बाहर नहीं आते। तो जब रामचंद्र कविराज समाधि लेते हैं तो वो देखते हैं मेरे गुरु कहाँ हैं। तो सब देखते हैं सब पानी में हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो वो भी पानी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब गुण मंजरी देखते हैं कि रामचंद्र कविराज है वो भी, उनका नाम होता है करुणा मंजरी, तो वो उस करुणा मंजरी को बोलते हैं। तो करुणा मंजरी जो है फिर जब पानी में सबके साथ ढूंढती है तो पता चलता है एक कमल के पत्ते के नीचे वो नुपुर मिल जाता है, वो नाग का भूषण मिल जाता है। तो करुणा मंजरी देती है गुण मंजरी को, गुण मंजरी नहीं करुणा मंजरी देती है मनी मंजरी को, मनी मंजरी देती है गुण मंजरी को, गुण मंजरी देती है रूप मंजरी को, रूप मंजरी देती है राधा रानी को। फिर राधा रानी वापस लगाती और फिर भगवान संतुष्ट हो जाते। फिर जल कीड़ा खत्म करते हैं फिर वो वन में चले जाते हैं। जब वन में जाते हैं तो उनकी लीला समाप्त होती है, फिर समाधि से बाहर आते हैं। फिर एक बार समाधि में जाते हैं तो वो देखते हैं कि राधा कृष्णा होली खेल रहे हैं तो एक दूसरे पर रंग फेंक रहे हैं। तो फिर राधा रानी इशारा करती है रूप मंजरी को, रूप मंजरी इशारा करती है गुण मंजरी को कि आप आइए और एक दूसरे पर रंग डालिए। तो ऐसे होली में जो है वो गुण मंजरी पूर्ण रूप से जो है रंग में वो उनके ऊपर रंग लग जाता है। तो जब बाहर दृष्टि बाहर समाधि से बाहर आती है तो वो देखते हैं कि उनके पूरे शरीर में जो है वो होली का रंग लगा होता है। तो जब वो लोग देखते हैं तो वो जाते हैं कैसे हुआ। फिर एक बार ऐसा होता है कि वो समाधि में जाते हैं तो महाप्रभु की आरती करते हैं, महाप्रभु को माला पहनाते हैं माला बनाकर वो भाव में आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनकी समाधि टूट जाती है। जब बाहर आते हैं देखते हैं महाप्रभु की माला जो है वो उन्होंने पहनी होती है। इस तरीके से सबको पता चलता है कि वो दिव्य व्यक्ति हैं। और फिर ऐसे करते 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 फिर श्रीनिवास आचार्य जो है वो प्रचार पूरे बंगाल में कर लेते हैं और फिर उनके कई शिष्य बन जाते हैं और उसमें प्रमुख थे रामचंद्र कविराज। लेकिन श्रीनिवास आचार्य ने कैसे तिरुभाव लिया इसका कहीं वर्णन नहीं। जैसे महाप्रभु ने कैसे तिरुभाव लिया ये कोई भी लेखक लिखना नहीं चाहता, क्योंकि वो उनको सहन नहीं होता महाप्रभु का तिरुभाव। उसी तरीके से श्रीनिवास आचार्य का भी तिरुभाव कहीं वर्णन नहीं है ने कैसे तिरुभाव लिया। श्रीनिवास आचार्य से बताया जाता है कि महाप्रभु के 116 पार्ट थे, महाप्रभु की कांटी के, महाप्रभु के 116। तभी जब श्रीनिवास आचार्य को दर्शन करते थे तो उनको महाप्रभु का स्मरण होता था। तो इस तरीके से हमने कुछ लीलाओं का वर्णन किया। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया मैं कुछ वर्णन कर पाऊँ, और क्षमा चाहूंगा कि मैं 10 मिनट फालतू रहा। तो गोपाष्टमी उत्सव की, श्री गणेशदास गोस्वामी तिरुभाव दिवस की, धनंजय पंडित तिरुभाव दिवस की, श्री श्रीनिवास आचार्य तिरुभाव दिवस की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निधाय गौर पे वनंदे।